أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید اور بہت سی دعا ہم سب کے لیے کہ جس نیت سے اور جس خلوص سے ہم نے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اس سیشن کا آغاز کیا ہے، اللہ ہماری نیتیں قبول کر لے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس راستے میں. یہ پہلا سیشن میں آپ کو بھیج رہی ہوں. بہت سے سیشنز کا یہ ایک خلاصہ ہے. جو لوگ پہلے شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، مثلا جو حیا علی الفلاح والی بہنیں ہیں، جو قرآن لیسنز والا گروپ ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ یہ اب میرے خیال میں چھٹا سال شروع ہو گیا ہے کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے جب میں دورہ شروع کرتی تھی تو میں الگ سے قرآن کی فرضیت، اصول القرآن، آداب القرآن اور یہ ساری چیزیں پڑھاتی تھی ایک سیشن میں. تو یہ ایک کمبائنڈ سیشن ہے، کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں ان کو اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان ٹاپکس کی، اور جو لوگ پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا اوور ویو ہوگا. سب سے پہلی بات جس سے میں آج کا سیشن اور یہ دورہ جس سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن ہم پر فرض ہے. یہ ہماری بہت سے لوگوں میں، ہم سب میں اور مجھ میں سب سے پہلے، ایک غلط فہمی تھی کہ قرآن جو ہے یہ ایسے ہے جیسے ہم ایک بونس عبادت کر رہے ہیں، ہم ایکسٹرا عبادت کر رہے ہیں اور وہ قرآن ہے. قرآن اٹھا کے پڑھ لینا اور کسی خاص موقع پہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں سے کوئی وظیفہ کر لینا، قرآن کی کوئی صورت کسی برکت کی وجہ سے پڑھنا، صبح سورہ یاسین پڑھنا، رات کو سورہ ملک پڑھنا، ہر حاجت کے حصول کے لیے سورہ یاسین پڑھنا، رزق کے لیے سورہ واقعہ پڑھنا، بری نظر کے لیے چار قل پڑھنا، یہ ساری چیزیں، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ ساری قرآن کی اپلیکیشنز ہیں. ان اپلیکیشنز سے ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور ہم انہیں فالو کرتے ہیں اپنی عقیدت کی وجہ سے اور اپنے عقیدے کی وجہ سے. لیکن آج سب سے پہلے تو اپنا ذہن اس بات پہ آپ فوکس کر لیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے. قرآن کے اندر جو فرض عبادات ہیں، جن کو ہم فرض عبادات کہتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کتب علیکم، لکھا گیا ہے تم پر، اور اس کو فرض کا ہم لوگوں نے اس کو ایکول ٹو فرض کر لیا ہے. ایک چیز کے لیے قرآن میں فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 85، تین آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور یہ انٹروڈکشن کے لیے میں پڑھ رہی ہوں، اور ان آیات میں جتنا مغز ہے اور ان آیات میں قرآن کی جتنی ڈسکرپشن ہے وہ اور جگہوں پہ اتنی آسانی سے، اتنی فوکسڈ ہمیں نہیں ملتی ہے. قرآن کا پورا سبجیکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے، ہر جگہ پہ قرآن نے اپنی بات بہترین طریقے سے کی ہے، لیکن قرآن کی فرضیت کا جہاں پہ ذکر ہے تو وہ بڑی ایسنس والی آیات ہیں. سورہ قصص کی آیت نمبر 85 ہے، ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، فرض کیا ہے اس نے تم پر یہ قرآن، لرادکل، تاکہ وہ لوٹا لائے، تاکہ وہ واپس لے آئے، الی معادن، اس وعدے کی طرف. یعنی قرآن کی فرضیت جو ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اس وعدے کی جگہ پر جب ہم واپس آئیں تو قُر ربی، فرما دیجئے کہ میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، من جا ابل ہدا، जो आया हिदायत के साथ वो मन हुआ फी ज़लालिम मुबीन, और जो हो गया एक खुली गुमराही में। तो कुरान की फर्जियत का मकसद ये है कि जब वादे वाली जगह पर वापस लौटाया जाए, जो हमारे अकीदे के मुताबिक आखरत है, तो अल्लाह अच्छी तरह जान लेगा कि कौन हिदायत के साथ आया है और कौन खुली गुमराही में है। इस किताब की फर्जियत इसलिए है क्योंकि हमने वापस जाकर उस हिदायत की गवाही देनी है जो इस किताब से हमें मिलती है। वमा कुंता तर्जु, और नहीं है आप, नहीं थे आप तर्जु कि आपको उम्मीद थी, अन युल्का इलैकल किताब, ये कि आपकी तरफ भेजी जाएगी ये किताब, इल्ला रहमत, मगर ये तो एक रहमत है मेरे रब का, तेरे रब की तरफ से। तो आप तो बिल्कुल हरगिज सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी तरफ ऐसी किताब भेजी जाएगी, लेकिन ये तो आपके रब की बहुत बड़ी रहमत है। फला तकूनन्ना, तो आप ना हो जाएं ज़हीरन लिल काफिरीन, मददगार और पुष्पनाह काफिरों के। यानी ये किताब जो है ये एक हद फासिल है ईमान और कुफर के दरमियान। वला यसुद्दन्नका अन आयातिल्लाह, और ना रुक जाएं अल्लाह की आयात से, बाद इज़ा अनजिलत इलाइका, बाद इसके कि वो नाजिल, उनजिलत इलाइका, बाद इसके कि हम उन्हें नाजिल कर चुके हैं आपकी तरफ। वदउ इला रब्बिका, और पुकारें अपने रब को, वला तकूनन्ना, और ना हो जाएं मिनल मुशरिकीन, शिर्क करने वालों में। तो ये किताब ईमान और कुफर के दरमियान हद फासिल है, और ये किताब तौहीद और शिर्क के दरमियान हद फासिल है। वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, और ना पुकारो अपने रब के, अपने अल्लाह के साथ कोई और इलाह, कोई और माबूद। ला इलाह इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद उसके सिवा। कुल्लु शय इन हालिक, हर एक चीज़ हलाक होने वाली है। इला वजह, मगर उसका, उसकी मर्जी, उसकी वजह। लहुल हुक्म, उसी के लिए सारी हुकूमत है, उसी के लिए सारा हुक्म है। व इलैहि तुरजाउन, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो कुरान की फर्जियत मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह कसस की आयत नंबर 85, 86, 87 और 88 से। तो इस बात पे तो अब हम एग्रीड हैं, और ये बात हम किसी को भी बड़ी दलील से कह सकते हैं कि हुजूर ये कुरान जो है ना ये ऑप्शनल नहीं है, ये फ़र्ज़ है। एक बात हो गई। दूसरी बात जो मैंने आपको समझानी है वो है हुकूकुल कुरान। कुरान जाहिर है हर फ़र्ज़ जो होता है उसके कुछ हुकूक होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं ताकि वो फ़र्ज़ अदा हो जाए। जैसे नमाज के हुकूक हैं, सही तरह वुज़ू करें, सही तरह खड़े हों, क़िबला रू हो जाएं, नियत करें, तकबीर करें, रुकू करना है, सजदा करना है, तो इन सारी चीज़ों को सही तरह, इन अरकान को सही तरह अदा करना जो है वो एक मकबूल नमाज के लिए ज़रूरी है कि वो फ़र्ज़ जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। कुरान के हम पर क्या हुकूक हैं? ये जो आपका हाथ है ना, अपना हाथ अपने सामने खोलें और इन पांच उंगलियों को देखें, और ये पांच उंगलियां जो हैं ये कुरान के पांच हुकूक हैं। कहीं से भी आप शुरू करें, अंगूठे की साइड से शुरू करें या चुंगलिया छोटी उंगली की साइड से शुरू करें, पहला हक जो है कुरान का वो है कुरान को मानना। हम कुरान को मानते हैं, हमारा कुरान पे पूरा ईमान है। एक उंगली अंदर फोल्ड कर लें। नंबर दो, हम ना सिर्फ कुरान को मानते हैं, हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है जी, हम सब नाजरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम समझते हैं या नहीं समझते हम कुरान को पढ़ते हैं। दूसरा हक भी हम बड़ा एहसन तरीके से अदा करते हैं, उंगली फोल्ड कर लें। तीसरा हक है कुरान को समझना। ये हम में से कोई अदा करता है और कोई नहीं अदा करता है जी। अगर समझने की कोशिश करते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं, इस राह में आपने वक्त लगाया है, एनर्जी लगाई है, तो ये उंगली फोल्ड कर लें। ठीक है जी, अगला क्या आ गया? अगला जो है वो है इसको समझ कर इस पे अमल करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हम लोग आज दौरा शुरू कर रहे हैं ये इस हक में है, ये इस हक को अदा करने के लिए है। क्योंकि 4 साल से हम मुठियां अपनी फोल्ड कर करके, ये तीन उंगलियां फोल्ड कर करके हम थक गए हैं। ठीक है जी, क्योंकि चौथी उंगली नहीं फोल्ड होती, अमल वाली उंगली नहीं फोल्ड होती और ये कभी भी नहीं फोल्ड होगी, बड़ा मुश्किल है ये। लेकिन हम सबकी कोशिश होगी और अल्लाह की तरफ से कबूलियत होगी और खुलूस नीयत होगा, और जहाँ तक हो सकता है हम कुरान पे अमल करेंगे, ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन चले उंगली फोल्ड कर लें, हो गया। अब जब अमल कर रहे हैं कुरान पे, तो जो आखिरी उंगली रह गई है वो है कि इसको सीख कर, इस पे अमल करके इसको आगे पढ़ाना। ये मुट्ठी बन गई ना आपकी, ये मुट्ठी जो है इसको याद रखें, ये हुकूकुल कुरान की मुट्ठी है। जब तक ये पूरी मुट्ठी नहीं बंद होगी, कुरान का हक नहीं अदा होगा। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना बता दूंगी, लेकिन ये जो हुकूकुल कुरान है, ये शाह वलीउल्लाह और उसके बाद उनके बेटे जिन्होंने मौजुल कुरान लिखी है, और फिर उसके बाद शेखुल कुरान जिनका ताल्लुक हमारे खैबर पख्तूनख्वा से ही था, ये हुकूकुल कुरान जो हैं ये इनके वज़ा किए हुए हैं। ये मैं आप हदीस और इनके हवाले नहीं दे रही, ये ऐसे आलिम हैं जो एक लिहाज से आप समझें कि कुरान की इंटरप्रिटेशन के ये बादशाह हैं, प्रोफेसर्स हैं और प्रोफेसर एमेरेटस हैं, क्योंकि इन लोगों को कोई नहीं ओवरटेक कर सका, इनका इनका इलम अभी तक अप्लाई कर रहा है। तो ये जो पांच हुकूक हैं, अपने हाथ को देखकर आप इन पांच हुकूक का सोचा करें और कोशिश करें कि जिस दिन मुट्ठी बन गई उस दिन कुरान का हक अदा होने की इब्तिदा हो गई होगी। ठीक है जी, ये मैंने आपको हुकूकुल कुरान पढ़ा दिए, पहले ये भी पूरा सेशन होता था, अल्हम्दुलिल्लाह छोटा करके मैंने इसमें डाल दिया। अगली बात, फर्जियत भी समझ ली और हुकूक भी समझ लिए। अब हुकूक भी समझ के हमने कुरान को पढ़ना है, हमने इसकी इब्तिदा करनी है, तो उसके आदाब क्या हैं? जब बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं तो उसका छोटा सा टेस्ट लिया जाता है, हाँ भैया ठीक है, हो गया, बच्चा आ गया क्लास में, एंटर हो गया बच्चा, उस क्लास के अपने आदाब होते हैं। इसी तरह आदाबुल कुरान है जो कुरान के अंदर ही मौजूद हैं। जब कुरान पढ़ा जाए तो इसकी तरफ कान लगा के खामोशी से सुनो, ये पहला अदब है। ये क्लास में भी पहला अदब है, ये फौज में भी पहला अदब है, और ये कुरान का भी अदब है, कुरान में मौजूद है कि इसको जिन्नो इंस जो हैं वो कान लगा के खामोशी से सुनते हैं। कान लगाने का मतलब क्या है? फोकस इसकी तरफ होना चाहिए। समाअत जो है ना, ये ताकत, ये सुनने की ताकत जो है, ये बड़ी वीक हो जाती है। कान के अंदर आवाज़ बिल्कुल प्योर अंदर जाती है, लेकिन दिमाग में फिर इधर उधर मुंतशिर हो जाती है। तो इस्तमा फस्तमा, ये लफ्ज़ इस्तमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, समा सिर्फ नहीं इस्तेमाल हुआ, और वो है कि फोकस करके सुनना और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ये सुनना है। ठीक है, दूसरा इसको नहीं छूते हैं, इसको ये भी हमें पता है कि ये कहाँ से बात आई है, ये भी कुरान में है कि नहीं छूते हैं इसको मगर जो तहारत में होते हैं, इल्लल मुतत्वहरून, नहीं छूते हैं इसको। तो तहारत में होने का क्या मतलब है? हम लोग साफ सुथरे कपड़े हों, साफ सुथरी जगह पे बैठे हुए हों, हाथ साफ सुथरे हों, बावजू हों। ख्वातीन के मखसूस दिनों के मसले क्या हैं? अगर आप कोई कोर्स अटेंड कर रहे हैं जिसकी क्लास आपसे निकल जाएगी, ये फिका का मसला मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नहीं बनाया ये पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है। अगर कोई क्लास आपसे मिस हो जाएगी, या कोई हाफिज़ा है जब जिसने अगर दौर ना किया तो उसको अपना सबक भूल जाएगा, तो वो कुरान पढ़ सकती है। लेकिन नियत जो है, अगर वो नफली इबादत की हैसियत से कुरान की तिलावत करना है, या कुरान का कोई जैसे वजीफा कर रहे हैं आप और सूरह मुल्क कुरान खोल के पढ़ रहे हैं और सूरह वाकया कुरान खोल के पढ़ रहे हैं, तो वो इन मखसूस दिनों में नहीं करना। मखसूस दिनों में बेहतर है कि कुरान के लिखे हुए सफ़े जो हैं और वो इबारत जो है उसे ना छुआ जाए, क्योंकि कुरान को छूने का जो है तो उसकी ममानियत है। अगर नोट्स लिख रहे हैं, अगर तहरीर को छूना ही पड़े, तो किसी कवर में से कोई कपड़ा रख के, कागज़ रख के उसके ऊपर आप हाथ रख सकती हैं, क्योंकि अगर आपने ना किया, कुरान बंद कर दिया, तो आपको वो उन दिनों में आपसे वो कोर्स मिस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको तहारत बता दिया, खामोशी से सुनना है, कान लगा के सुनना है, फोकस करना है, बावजू और बातहारत होना है, पाक साफ जगह पे बैठना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी डाइवर्जन लेके, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं आपको कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की टिप्स भी बताऊंगी, तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आप दिन का कोई एक हिस्सा मखसूस कर लें, जहां पे आपने सबको बता देना है, मुझे ना इनवाइट करें, मुझे ना डिस्टर्ब करें, बच्चे ये जो है ना 1 घंटा है और रमजान में ये टाइम फिर ज्यादा हो जाएगा, तो ये टाइम जो है मेरा ये कुरान का है, प्लीज मुझे ना डिस्टर्ब करें, ठीक है। एक हिस्सा मखसूस करना है, उसमें नियत करनी है, दूसरी कोई जगह मखसूस कर लें, वहां अपने सबक के दौरान इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें जमा कर लें। हैं हमारे ड्रेसिंग टेबल देखे होंगे आपने बेडरूम्स में, कंघी पड़ी होती है, परफ्यूम पड़ा होता है, लिपस्टिक पड़ी होती है, लोशन पड़ा होता है, कैसे हमने इकट्ठी करके चीजें रखी होती है ना। और जब ये फिर हमारे ये वाले काम होते हैं, फिर हम कहते हैं ला हमें जगह नहीं मिल रही। प्रायोरिटीज जाहिर करती है ये चीज, आपकी प्रायोरिटी क्या है। मैंने ये भी देखा है, छोटा सा एक तकिया के ऊपर लोगों ने सारा कुछ रख लिया। वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, आज मैं खुद इस तरह बैठी हुई हूँ, राइटिंग टेबल पे नहीं बैठी हुई। हाँ, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं वो रख लें, हेडफोन्स हैं आपके, फ़ोन है आपका, कॉपी है, कलम है, सारी चीज़ें, अपना कुरान का नुस्खात, जो तफसीर आपको चाहिए, जो तर्जुमा चाहिए, वहाँ जमा करके रख लें अच्छी सी जगह, ठीक है। अच्छा, ये जो अब अच्छा अगली टिप जो है ना, ये गौर से सुननी है। कुरान जब मैं पढ़ा रही होंगी ना, अभी जब जहाँ पे लिखना होगा ना, वो मैं आपको बता दूंगी कि अब ये लिखने वाला शुरू हो गया है। काफ़ी चंद दुरूस जो हैं शुरू के, वो आपके ओरिएंटेशन के हैं, तो आप परेशान ना हो, आपको शायद ना लिखना पड़े, लिख लें तो बेहतर है, आपके पास रेफरेंस होगा। लेकिन ये हदीस में है कि सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब पढ़ाते हैं ना तो हम बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन निकल के भूल जाता है, यहाँ से निकलते ही भूल जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्ताईन बी यमीनिक, तुम मदद लो अपने दाएं हाथ से, यानी कि लिखो, तुम उस चीज़ को लिख लो। लिखना जो है, और ये साइंस से प्रूवन है, सुनना जो है वो 10% या 20% याद रहता है। जो चीज़ आप लिख लें वो आपको 40 से 50% तक जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, कमिट हो जाती है, ठीक है। इससे भी एक स्टेप आगे चलें, मैंने कुरान के हुकूक पढ़ाए थे ना, पांचवा हक क्या था, किसी को पढ़ाना। तो किसी को जो चीज़ आप पढ़ा देते हैं ना, वो 80% बल्कि 90% मेमोरी में कमिट हो जाती है। तो ना सिर्फ ये कि एहतमाम इस बात का करें कि आप लिखें उसको, आप एहतमाम इसका भी करें कि जो चीज़ आपने लिखी है वो आप किसी को सुना दें, वो सुनने वाले की अपनी मर्जी, आगे से वो जो करता रहे। है मैंने ये भी देखा है कि लोग बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, सर खुजाते रहते हैं, खाना मांगते रहते हैं, अम्मा जो है वहाँ खड़ी होकर अपना लिखा हुआ सबक उन्हें सुना देती हैं, क्योंकि सुनाने से जो है वो ज़्यादा याद होता है। और कुरान जो है इसकी नेचर, इंशाल्लाह जब हम एक्सप्लोर करेंगे इसको, ये कलाम है, अल्लाह बात कर रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खिताब के ज़रिए ये पढ़ाया है। तो पढ़ाना जो है वो इसकी अल्टीमेट लर्निंग स्ट्रेटजी है, कि अगर अमल करना है ना तो आप ऐसा करें कि इसको पढ़ाने का एहतमाम करें, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताऊँगी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। नंबर एक, अगर आप ये कहें कि मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, ये कैसे हो सकता है, इसकी मैंने आपको दो कहानियाँ सुनानी है। पहली कहानी तो हमारे अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उन्होंने गारे हिरा में कितना कुरान सुना था पता है आपको? पहली वही जो थी, इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, वालमहु मालम, जो उसको वो पढ़ाया जो उसको नहीं आता था, सॉरी पूरी आयत मुझे नहीं वो याद हो रही, लेकिन इतना ही था बस, ये मैंने आपके सामने पढ़ दिया। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा और कहा कि ये कुरान है, अब कुरान आप पे रिवील हो गया है, क्या बात है जी, वाह वाह वाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ार हिरा से नीचे आए, हज़रत खदीजा से मिले, अपनी परेशानी का इजहार किया, अपना डर सुनाया, हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी, कंबल उढ़ाया, वो भी हमें कुरान से पता है, वो सूरह मुज़म्मिल में, ऐ कंबल में लपटने वाले, ऐ छुपने वाले। तो ये इतना ही कुरान सीख के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके अपने ख़ानदान को, अपने पहले अपनी बीवी को हज़रत खदीजा को, और फिर अपने ख़ानदान को, अपने कराबतदारों को दावत दी थी। ये तो यानी कि ये बात बड़ी कम लोग बताते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग ये कहते हैं कि आपके पास 12 उलूम होने चाहिए और आपको अरबी आनी चाहिए और आपको फ़िक्का और हदीस और वल्लाहु आलिम इल्मुर रिजाल अस्माउर रिजाल ये सारे उलूम आपके पास होने चाहिए तो जी आप कुरान पढ़ाने के काबिल होते हैं। तो पहली तो मैंने आपको जो दलील दी है वो तो मैंने आपको सोर्स से दी है, यानी कि उस जड़ से मैंने आपको दलील निकाल के दी है जहाँ से कुरान आया है। हम बंदे बशर हैं, हम इंसान हैं, हमें एक इंसान ने कुरान पढ़ाया है और उस इंसान ने कुरान उस वक्त पढ़ाना शुरू किया था जब उसके पास इतनी सी वही थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, और अगली आयत का मुझे तर्जुमा भूल गया लेकिन वो ये है कि तुझे वो सिखाया जो तुझे नहीं आता था, कलम वल्लमा बिल कलम। ये इतनी ही वही थी, पूरी रेवलेशन इतनी थी, और ये उतर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। तो कहा भाई ये हमें सबक मिल गया है, बस ये सबक है। ठीक है जी, तो बिल्कुल कोई बड़ा स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कुरान पढ़ाना शुरू कर दें। ये मैंने आपको बार तीन चार दफ़ा बता दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात, अगली दलील जो मैं आपको दे रही हूँ, रिसर्च से ये पता चला है कि जो चीज़ जिस चीज़ को आप दिन में 1 घंटा देते हैं, 1 घंटा चाहे आप उस रीड कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ के वो आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं आप, वो समझा रहे हैं, उसको खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो 1 घंटा जो है वो आपने डेडिकेटेड उस चीज़ को दिया हुआ है। आपको पता है कि आप 1 साल में कितने घंटे उसे दे चुके होंगे, चलें छुट्टियां भी, एक छुट्टी का दिन भी निकाल लें, आप 1 साल में 300 घंटे उस चीज़ को दे चुके होंगे, और 300 घंटे कोई भी टॉपिक पढ़ने वाला जो है वो उसका स्पेशलिस्ट बन जाता है। आप MBBS का करिकुलम निकाल के देखें, आप PhD का निकाल के देखें, आप MA का, BA का, 300 घंटा जो है ना ये स्पेशलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। 1 साल के बाद आपको उस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज होगी जो 80% पॉपुलेशन को नहीं है। कभी आपने ये सोचा है कि ये 1 घंटा कितना कीमती हो सकता है और इस 1 घंटे को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको दलील दूंगी अपने आप से। मैंने आपको कहा था ना, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना बताऊंगी आपको। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, और मैंने कुरान कब पढ़ना, कब सीखना शुरू किया था कुरान, मैंने आप ये समझे आज से ठीक 22 साल पहले मार्च के महीने में ही शुरू किया था। जब मेरी एक सहेली ने मुझे ये कहा, और ये बाहर के मुल्क में एक सहेली थी मेरी, उसका ताल्लुक शाम से था, उसने कहा कैसा है अफशां कि तुम्हारे यहाँ तो बच्चा पैदा होने वाला है और कितना कुरान तुम्हें आता है, ये बच्चा तो तुम फॉरेन कंट्री में पैदा करके उसने तो उसको तुमने दीन सिखाना है, कैसे सिखाओगी तुम? और उसके साथ मैंने, अल्लाह उसे जजाए खैर दे, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, उसके साथ मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था। तो ये सफ़र मेरा तब शुरू हुआ था, और इस एहसास से कि मेरा बच्चा जो है वो एक ऐसे मुल्क में पैदा होगा जो बेदीन है, लादीन है, और वहाँ पे मैंने इस बच्चे की तरबियत करनी है। और कुरान के साथ हमारा सफ़र शुरू हो गया। कुछ थोड़ा पढ़ा, कुछ ना पढ़ा, सूरह बकरा बहुत दफ़ा पढ़ी, ना समझी, फिर समझी। चलते 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 मैं आपको ये बताऊं कि 2005 में जब एबटाबाद में जलजला आया था, तो 2003 और 4 में मैं एबटाबाद में रहती थी, और वहाँ पे मेरी सहेलियों ने ये मुझे कहा कि डॉक्टर अफशां आपको जितना कुरान आता है ना ये हम सबसे ज़्यादा है, मतलब इतना तो मैं 8वें पारे तक तर्जुमे के साथ पढ़ चुकी थी, तो आप ऐसा करें कि हमें पढ़ाना शुरू कर दें। मुझे बड़ी हंसी आई थी सुन के, लेकिन मैंने ये मुझे बात पता थी कि कुरान सीखने का तरीका जो है वो कुरान पढ़ाना है। तो उन्होंने 8 वो ख़वातीन थीं, अल्लाह उन्हें बहुत बड़ी जजाए खैर दे, उनमें से एक एक खातून शायद यहाँ सुन रही होंगी ये, अब बाकी 7 मेरी सहेलियाँ कहीं और हैं, तो उनके साथ हमने क्लास शुरू की और हमने पहले 8 पारे ही पढ़े, और फिर एबटाबाद में जलजला आ गया, हम कहीं और चले गए, पेशावर चले गए, फिर पेशावर में क्लास शुरू की। 2011 में मैंने जिन शेखुल कुरान का आपके सामने ज़िक्र किया था उनके एक स्टूडेंट का दौरा अटेंड किया, और वो दौरा जो था वो आप समझें कि एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं उस दौरे को अटेंड करने, सैकड़ों लोग थे, वो बहुत बड़ा, उसका एक अलग हाल था, उसकी एक अलग कहानी है। पश्तों में होता था वो दौरा, हम इंग्लिश में लिखते थे, उर्दू में लिखते थे, कि ऐसा भी हुआ कि लाहौर से हम भागे भागे बस में आए, क्लास अटेंड की और वापस लाहौर गए, लेकिन वो दौरा हो गया। और उस दौरे के एंड में मुझे ये पता चला कि ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ये उस्तादों का दौरा था। वो मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के कि ये दूर दूर से कुरान पढ़ाने वाले आके वो दौरा अटेंड करते थे, और वो हमने अटेंड कर लिया, हजम भी कर लिया, उसके नोट्स भी लिख लिए। आज भी उन नोट्स को मैं रेफ़र करती हूँ। तो ये मेरी कहानी है, मैंने कोई मदरसा नहीं अटेंड किया, मेरे पास सनद अपने मदरसे की है क्योंकि मैंने वहाँ पे दौरा अटेंड किया है। सनद जो है, थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊँ, सनद एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कुरान का उस्ताद जो है वो आपको सर्टिफाई करता है कि इसने मुझसे पढ़ा है, और फिर वो अपनी जो है अपनी सनद देता है, वो अपनी एक आप समझें कि एक उसका आई डोंट नो, जैसे एक वो नहीं होता कि ये मेरा बाप था और ये उसका बाप था और ये, तो ये यानी ये मेरा उस्ताद था और वो उसका उस्ताद था और वो उसका उस्ताद था, और वो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी सहाबी तक वो लाइन जो है वो जाती है। ये हमारी पढ़ाई थी और ये पढ़ाई हो गई हमारी। तो देखें, कुरान की फर्जियत मैंने आपको पढ़ा दी, कुरान के हुकूक मैंने आपको पढ़ा दिए, कुरान के आदाब मैंने आपको सिखा दिए, और मैंने आपको ये टिप्स भी बता दी कि आपने कैसे शुरू करना है, आपको कैसे आसानी से समझ आ सकती है, आपने कितना टाइम देना है इसको, और ये कि आप भी कुरान पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, आखिरी जो आज का इस इब्तदाई लेसन का जो हिस्सा है वो है उसूलुल कुरान, और ये बार बार आएंगे। ये मैं जो चीज़ है ना, आपको जब सूरह अल-फातिहा शुरू होगी इंशाल्लाह, तो ये चीज़ मैं आपको वापस इसमें रेफ़र करूँगी। उसूलुल कुरान मुख्तसरन आप इस वक्त समझ लें, लाइक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल, के कुरान के चार जो हैं वो उनको मुहिम्मा कहते हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सेंट्रल जो हैं, इसकी जो थीम्स हैं, ठीक है, जिनके इर्द गिर्द बाकी बातें की गई हैं ताकि वो थीम समझा दी जाए। पहली थीम है तौहीद, कुरान तौहीद की किताब है। ठीक है जी, तो तौहीद से तो कोई जाहिर है, तौहीद, हम तौहीद परस्त हैं, हम एक अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, हम एक अल्लाह को मानते हैं, ये तौहीद है, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। ये तौहीद हम तक कैसे पहुंची है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाई है जी, वो रिसालत है। ये दूसरा उसूल है, पहला उसूल तौहीद, दूसरा उसूल रिसालत। और ये रिसालत जब दुनिया में रिवील हुई थी तो इन रसूलों को क्या करना पड़ा था, ये कितनी मुसीबतों में पड़ गए थे, कितनी आजमाइशों में पड़ गए थे, है ना। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जहाद किया था, इन्होंने कोशिश की थी, जिसको अरबी में जहाद कहते हैं, जहाद फी सबीलिल्लाह। ये तीसरा उसूल है, पहला उसूल तौहीद, दूसरा उसूल रिसालत, तीसरा उसूल जहाद फी सबीलिल्लाह। और ये जहाद फी सबीलिल्लाह जब दुनिया में रिवील हुआ और रसूलों ने और पैगंबरों ने आके कहा कि हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, आइए आप हम अल्लाह पर ईमान लाइए और हमारी मदद कीजिए, तो उन्होंने क्या किया था, लोगों ने फिर क्या किया था, अल्लाह की राह में खर्च किया था, इन्फाक, इसको इन्फाक कहते हैं, तर्जुमा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने को इन्फाक फी सबीलिल्लाह कहते हैं। तो चार उसूल हो गए, और ये एक दूसरे के बगैर नामुमकिन है, यानी ये चेन याद रखना बहुत आसान है। अल्लाह एक है, ये तौहीद है, अल्लाह ने हमें कैसे बताया कि मैं एक हूँ, रसूलों के जरिए बताया, वो रसूल हैं। उन रसूलों ने क्या किया दुनिया में कि हमें तौहीद का पता चल गया, उन्होंने जहाद किया, जहाद फी सबीलिल्लाह। और हम आम इंसानों ने उन रसूलों की कैसे मदद की थी, हमने अपनी जान दी उनको, हमने अपना माल दिया, हमने अपनी औलाद दी, हमने अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह का दिया हुआ हमने अल्लाह की राह में खर्च किया, तो वो है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। ये चार उसूल हैं कुरान के, ये चार बड़ी थीम्स हैं, जब तक ये दिल में ना बैठी हुई हो कुरान की समझ नहीं आती है, ये समझ नहीं आती कि अमल कैसे करना है। कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन इस अमल के ये क्यों हमें अल्लाह बता रहा है, ये समझ नहीं आती। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने चार मेन थीम्स कुरान की सीख ली हैं। फिर ये जो उसूल हैं इनको मैंने आपको बताया ना, क्योंकि शाह वलीउल्लाह फारसी में लिखते थे और किसी को आज तक ऐसी कोई वो नहीं हुई, तौफीक नहीं हुई कि उसे ट्रांसलेट कर ले, वो इतना ज़बरदस्त और इतना वो पुरमग़ज़ है और इतना ज़खीम है उनका जो वो ख़जाना है कुरान का, कि वो नहीं उसको खोला जा सकता। तो उसूल मुहिम्मा, यानी इंग्लिश में मैंने आपको कहा कि द सेंट्रल थीम्स जो हैं वो ये हैं। दूसरे जो इनको सपोर्टिंग उसूल हैं वो हैं उसूल मुमद्दा, मदद करने वाले उसूल मुमद्दा, उनको सपोर्ट करने वाले उसूल जो हैं वो क्या हैं। उनमें जो पहला उसूल है ना वो है कुरान का रब्त। ये कुरान का जो कनेक्शन है ना कि ये आयत यहाँ क्यों है, ये अच्छा यहाँ पे रोज़े का हुक्म है और उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि वो तुझसे मेरे बारे में पूछते हैं तो उनको कहो कि मैं तो करीब ही हूँ, हैं तो ये इसका और रोज़े का आपस में क्या ताल्लुक है। और फिर कहीं पे हज की बात हो रही है और उसमें एक पैगंबर की कहानी शुरू हो जाती है। तो ये रब्त जो है ना, जब तक ये रब्त नहीं समझ आएगा, कितने दर्स हमने सुने हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे दर्स सुने हैं, लेकिन दर्स के एंड में इंसान कहें यार वो मैंने पैगंबरों की कहानियाँ सुन ली हैं, तो मैंने नमाज भी पढ़ ली है, तो रोज़ा भी समझ लिया है, और अब तो क़यामत की भी 2-3 आयतें तो हो ही गई हैं, अच्छा खासा डरा भी दिया है अल्लाह मियाँ ने, फिर ये भी कह दिया कि जन्नत भी है उसमें दरख्त हैं, आखिर ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई कैसे हैं, इनका आपस में कनेक्शन क्या है, इनका राबता क्या है, इसको रब्त कुरानी कहते हैं। और रब्त जो है ये सबसे मेन उसूल है, जो ऊपर वाले चार कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं ना, तौहीद, रसालत, जहाद फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इनको सपोर्ट करने के लिए ये रब्त कुरानी है। कि ये समझाना कि जब तक इन्फाक फी सबीलिल्लाह नहीं होगा तौहीद नहीं साबित होगी, तौहीद खुद ब खुद सामने नहीं आएगी, लोगों को समझ नहीं आएगी जब तक कुर्बानी नहीं दोगे, ये चीज़ जो है ना ये कुरान का रब्त है, ये कुरान का कनेक्शन है। और रब्त समझना इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दौरे में एक मेन मकसद मेरा ये है, मैं तो अब यही आपको बताती रही हूँ ना कि हमने अमल करना है, अमल करने के लिए रब्त समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उसूल, पहला मैंने आपको बता दिया कुरान का कनेक्शन ऐसे है कि ये चारों जो मेन उसूल हैं ये प्रूव होते हैं। दूसरा जो मुमद्दा मदद करने वाला उसूल है वो है दलाइल, बुरहान, दलाइल यानी कि आर्ग्यूमेंट्स। अल्लाह मियाँ क्या आर्ग्यूमेंट्स देता है, अल्लाह मियाँ क्या कैसे हमें बताता है कि जो है तो जन्नत बहुत प्यारी है जैसे ऐसा, या जन्नत बहुत बड़ी है जैसे ये, तो अल्लाह क्या दलाइल दे रहा है और वो दलाइल आखिर हमें कैसे समझ आते हैं। दलाइल कुरान के समझने बहुत ज़रूरी हैं, दलीलें अल्लाह ने जगह जगह दी हैं, मिसालें अल्लाह ने जगह जगह दी हैं, और वो इस रब्त में हीरों की तरह जड़ी हुई हैं इस पूरे सिस्टम को हमें समझाने के लिए। सबसे पहले दलाइल जो है वो है अकली, अक़ल के दलाइल जो हमारी अक़ल में समझ आते हैं। अल्लाह कहता है इतनी बड़ी ज़मीन है, कितनी प्यारी है, देखो इस पर तुम कितने मज़े से चलते हो, है ना अच्छी, ये दलील यानी कि मैं कहती हूँ कि एक ऐसे इंसान को जो हो कहे कि मैंने कभी मानना ही नहीं है कि अल्लाह कुछ है, उसके इतनी अच्छी ज़मीन कहाँ से आई है, हैं किसी ने तो बनाई है ना, कोई सुप्रीम पावर है, कोई जो अजीब व गरीब अल्फाज लोग इसने, सेलेस्टियल इंटेलिजेंस है और वल्लाह आलिम क्या है क्या है, बस एक अल्लाह उनके मुंह से नहीं निकलता, तो आखिर ये ज़मीन किसी ने तो बनाई है ना। फिर ये आसमान, ये नीला खूबसूरत ब्राइट आसमान, इसमें बादल हैं वो बारिश बरसाते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बरसाते हैं, ये फल देखें, फूल देखें, ये शहद की मक्खियाँ देखें, चूंटियाँ देखें, ये दलाइले अकली हैं, ये हमारी अकल से आए हैं। दूसरे हैं दलाइले नकली, वो नकल करके बयान किए जाते हैं कि वो कौम पता है ना तुम्हें, वो वाली कौम उसको हमने बंदर बना दिया था, ये दलाइले नकली हैं, हमने इन चीज़ों को देखा नहीं है और ये हमारी अकल में भी नहीं आती ये चीज़ें कि इंसान आए बंदर कैसे बन गया, वो डार्विन बेचारा कहता कहता मर गया कि हम बंदर से बने तो ये तो वापस बंदर बन रहा है। तो दलाइल नकली जो हैं ये हमारे ईमान की वजह से, ये दलाइल जो है दे आर अनब्रेकेबल, और वो तौरात में भी मौजूद हैं, इंजील में भी मौजूद हैं और हिस्टोरिक रेफरेंसेस हैं, जैसे शक्ल कमर का वाकया है, ये कुरान में दलील के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और वो हुआ है कि ये शक हो गया। अब हमें हिस्ट्री से ये पता है कि इंडिया में भी इसके रेफरेंसेस हैं, इंडिया में लोगों ने लिखा है कि इस दिन जो है इस टाइम पे इंडिया में देखा गया था कि चांद दो टुकड़े हो गया, तो ये वो एक दलील नकली है, हिस्ट्री से हमारे पास आई है, ठीक है जी। तीसरी जो दलील है वो ज़रा समझने की ज़रूरत है, वो है दलाइल वाहिया, जो वही से हमारे पास आए हैं, सिर्फ वही उनका सपोर्ट है, सिर्फ वही से हमें पता है कि हाँ ये सच है, जैसे जन्नत में क्या है, दोजख में क्या है, मेराज पे क्या हुआ था, ये बातें जो है ना ये दलाइल वाहिया हैं। और कुरान के अगर आप वो दलाइल वहिया भी इस नज़र से स्टडी करें कि ये अल्लाह एक दलील दे रहा है, तो वो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से समझ आते हैं, क्योंकि आप उन्हें फिर ब्रेक नहीं कर सकते। वो दलील दलील होती है, वो पक्की दलील होती है। आप उसको ये नहीं कह सकते नहीं ये गलत है, ये ठीक नहीं, ये इसलिए गलत है, उसको आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है जी। और तीसरा, एक मैंने बता दिया कुरान का रब्त, दूसरा मैंने बता दिया कुरान की दलीलें, और तीसरी चीज़ जो है वो है ये किस किस्म की आयत है, ये आयत जो है इसमें अल्लाह क्या बता रहा है। ये इंशाल्लाह सूरह फातिहा जब पढ़ेंगे उसमें समझ आएगी, क्योंकि वो पूरा एक, यानी कि वो एक सिस्टम बना देता है आपके सामने कि ये जो आगे कुरान आ रहा है ना इसमें ये है। लेकिन मैं आपको चार किस्म की आयत समझा देती हूँ। एक है तसल्ली की आयत, जो कुरान पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको अल्लाह तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारी बातें नहीं मानते कोई बात नहीं, ऐसा इसकी खुद तुम परवाह ना करो, तुम्हारा काम पढ़ाना है, आगे ईमान अल्लाह देगा। ये तसल्ली की आयात हैं। दूसरा है जजर, उनमें डांटे हैं, अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह अपनी नाराज़गी का इजहार करता है कि कैसा क्या गलत काम किया इन्होंने, क्या इन्होंने किया, काश इन्हें पता होता कि अल्लाह कितना नाराज़ हो गया। ये जजर है, डांट है, एक तसल्ली है एक डांट है। ठीक है जी। फिर इसमें वाद है, वादे हैं, और अच्छे लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हैं और बुरे लोगों के लिए बुरी चीज़ें हैं, ये माद की आयात हैं। और फिर इसमें किसस हैं, इसमें कहानियाँ हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो जो चार टॉप के उसूल मैंने आपको बताए थे ना, तौहीद, रिसालत, जहाद फी सबीलिल्लाह और इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये इनको साबित करने के लिए हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हैं। क्योंकि वैसे बगैर किसी दलील के और बगैर किसी कनेक्शन के, बगैर किसी तसल्ली के और बगैर किसी कहानी के, ये कॉन्सेप्ट समझाने गैब से बहुत मुश्किल हैं। अल्लाह ने ये सारी बातें हमारी इंसानी समझ के लिए आसान बनाई हैं। ताकि क्यों आसान बनाई हैं, एक बच्चे को जब आप ये कहते हैं कि बच्चे जाएं वो जूते उठा कर ले आए, और वो जूते ऊंचे पड़े होते हैं, तो आप साथ में ये कह देते हैं ना कि बेटा जी आराम से जाएं, दरवाज़ा खोलें, देखो उंगलियां ना आ जाएं दरवाजे में, और वो स्टूल पड़ा है वो रख दें, उस पर चढ़ के जूता उठा के झाड़ के मेरे पास ले आए, है जी। तो वो जूता लाने का अमल आपने ब्रेक करके, छोटा करके, आराम से बच्चे को सपोर्ट करके आपने उससे वो काम करवा लिया। ये पूरा कुरान इसलिए आया है कि इसके जो मेन उसूल मैंने आपको समझाए हैं, उन उसूलों के मुताबिक हमें हमारी ज़िंदगी में अमल करना सिखा दे, अमल करना समझा दे। इसके साथ ये पहला सेशन मैं आपके लिए रोल करती हूँ, रोकती हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है मुझे प्राइवेटली भेजें, क्योंकि जब ये सेशन आएगा तो ग्रुप बंद हो जाएगा, ग्रुप में फिर और पोस्टें नहीं हो सकेंगी। आप सबके लिए बहुत से प्यार और बहुत सी दुआ के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।